नमस्कार संतोष, मड़ावलन से आपका दोस्त योगेश। जिस तरीके से कई किसान अपनी प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं और सरकार द्वारा किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति पर उन्हें एक बीमा के तहत लाभ भी पहुंचाया जा रहा है, और इसी के तहत इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में कृषि विस्तारक अधिकारी जागेश्वर जी ढोम में जुड़े हुए। जागेश्वर जी, मोबाइल वाणी पे स्वागत सर आपका।
हाँ जी, नमस्कार जी।
सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई, सर
जी
इसको एक आम इंसान को किस तरीके समझाएंगे आप?
जी फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि इसमें अगर किसान की ये फसल अतिवृष्टि से या सूखा से या ओला वगैरह से क्षतिग्रस्त होती है, यानी उपज नहीं मिलती, तो उसका पूरा जो ये है रकम है ये बीमा के द्वारा मिल जाती है किसानों को। और इसमें क्या है, ये प्रीमियम जो है वो बहुत कम भरना पड़ता है, और बाद में नुकसानी का पूरा हर्जाना सरकार के द्वारा या फिर बीमा कंपनी के द्वारा किसानों को मिल जाता है। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इसमें हर किसान ने खरीफ बीमा या रबी बीमा योजना की स्कीम अपनाना चाहिए या लेना चाहिए।
सर, आपके क्षेत्र में कितने किसानों ने फसल बीमा योजना किया है या किया था पुराने समय में? क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जानकारी है कि आपके क्षेत्र में कितने लोगों ने किया था या किया है अभी वर्तमान में?
जी हमारे एरिया में तो जी समझो सोसाइटी के या बैंकों के जो लोन लिया है उन्होंने, किसानों ने, उनका तो वहां से हो ही जाता है बीमा। लेकिन अगर कोई प्राइवेट करना चाहता है, जैसे बैंक का या फिर सोसाइटी का खातेदार नहीं है और उसका बीमा नहीं हुआ, तो वो मतलब प्राइवेट भी कर सकता है। तो हमारे यहाँ से लगभग 400 450 किसानों ने बीमा किया है और उनको पिछले वक्त लाभ भी मिला है बीमा का। जी
सर, बीते वर्ष आपके क्षेत्र में बाढ़ के कारण क्षति हुई थी, कई फसल बर्बाद हो गई थी, तो क्या उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ मिल पाया है?
हाँ जी, पिछले साल जो 28-29 की रात को जो कनाल नदी में बाढ़ आई थी और किनारे के जो खेत है उनकी फसल नुकसानी हुई थी, यानी फसलों में पानी घुस गया था, कई किनारों की फसलें बह गई थी, तो उनको लाभ तो मिला कहना राजस्व विभाग के द्वारा, लेकिन बहुत कम मिला। जितना मिलना चाहिए था, जितनी नुकसानी हुई उतना लाभ राजस्व विभाग के द्वारा नहीं दिया गया।
सर, इसमें क्या देखा जा रहा है सरकार के द्वारा कि किसानों को जो भी बाढ़ हो, क्षतिपूर्ति हो या फिर अन्य कोई ओलावृष्टि हो, ऐसी समस्याएं जब किसानों के सामने आती है तो सरकारें इनको उचित हर्जाना क्यों नहीं दे पाती है? क्या कारण है जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इतनी बड़ी योजना जो किसानों के लिए चलाई जा रही है, तो उनका लाभ अभी भी पूर्ण किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है?
जी तो इसमें क्या है कि थोड़ा ये अपने राज्य शासन है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी कुछ इसमें ढिलाई है। ढिलाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बीमा के जो ये कर्मचारी वगैरह है बीमा ये कंपनी के, वो उसके ऊपर ध्यान देते नहीं, और बीमा जो लोग बाग ये भरते हैं तो वो उनका लाभ हो जाता है कंपनी का। लेकिन असल में क्या है कि जो सरकार ने कहा है कि हम किसानों को लाभ देंगे या अगले 2 साल तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो वो सपना किसानों का लगता है कि पूरा नहीं होगा, इसलिए कि किसानों का ध्यान ही नहीं है किसानों के ऊपर। बातें तो बहुत करते हैं मंत्री लोग किसानों के बारे में, लेकिन इधर जमीनी हकीकत यह है कि उतना ध्यान नहीं दिया जाता। अगर देते तो किसानों की माली हालत बीमा के द्वारा अच्छी होती। जी
सर, जिस तरीके से एक किसान अगर फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगर करना चाहता है तो उसको किस तरीके की क्या क्या कठिनाई आती है और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व अन्य समस्याएं जो सामने आ रही है या जो भी उनके सामने जो अधिकारी द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसको किस तरीके से किसान उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सके, क्या कहना चाहेंगे इस लेकर?
जी, इसके लिए तो मैं कहूंगा कि मतलब व्यक्तिगत ये फसल बीमा होना चाहिए, ना कि गांव के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर। व्यक्तिगत माने जिसकी जो मतलब फसल नुकसानी हुई, यदि सही में नुकसानी है तो उसको उसका बीमा का लाभ मिलना ही चाहिए। होता क्या है कि ये गांव के लेवल पे वो मतलब देखा जाता है नुकसानी। अब मान लो किसी की अच्छी फसल लगी है,
जी
तो अगर गांव के ऊपर से लेते हैं तो जो गरीब किसान है जिसके यहाँ पे उपज नहीं हुई, उसको मतलब बीमा का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि गांव के लेवल पे हुआ ना ये बीमा योजना। तो मैं मेरे ये दृष्टिकोण से ऐसा होना चाहिए कि व्यक्तिगत मतलब जीवन बीमा ये होना चाहिए फसल का,
जी
यानी जिस किसान को सही में नुकसानी है तो उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। जिस किसान ने भले बीमा किया हो लेकिन उसको उपज अच्छी आई है तो उसको उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए।
जी
जी
सर, मेरा एक और सवाल है। जिस तरीके से कई ठेकेदार हो या फिर बटाईदार हो, उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किस तरीके से मिले और उसके लिए क्या नियम बनाया जाए ताकि उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके?
जी इसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि जैसे किसी का खेत है, किसी ने ठेका से लिया है या बटाई से लिया है,
जी
तो वो खेत वालों से वो लोग लिखवा ले कि भाई हमने अपना खेत इनको बटाई से दिया है या मतलब हाँ ठेके से दिया है। अगर वो प्रूफ लिखा हुआ बीमा वालों के सामने रखते हैं, कंपनी वालों के सामने, तो कंपनियां उसको ठेके के द्वारा या फिर बटाई के द्वारा इन्होंने मतलब खेत या जोता है भी और बीमा किया है तो उनको उसका लाभ मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।
जी
जी
सर, आपके क्षेत्र में ऐसे कितने किसान हैं या हुए हैं जिन्होंने ठेका बताई से खेत जोता है और उनको प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ मिल रहा है सर?
जी ऐसे लोग जी हमारे यहाँ लगभग हाँ 1.5 से ये किसान होंगे जिन्होंने बटाई और ठेका से दूसरे के खेत लिए हैं और उनको लाभ मिला है। लेकिन कई किसान लोग ऐसे हैं कि जिनका खेत है वो उन्होंने अपना खेत तो ठेका बटाई से दे दिया है, लेकिन ठेका वालों को या बटाई वालों को लाभ नहीं मिलता, वो लाभ मिलता है खुद खेती वालों को, मालक
जी
को। तो इसमें ये पटवारी जी का मतलब थोड़ा ये होना चाहिए ध्यान कि
जी
किसका खेत किसने ठेका से बटाई से जोता है, उन्हीं के नाम से वो मतलब ये बीमा करे तो किसानों को लाभ मिल सकता है।
जी सर, कई किसानों से मैंने बात किया था कि उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, जिसको प्रधानमंत्री जी वृद्धा पेंशन लागू किया गया है सरकार ने।
जी
तो किसानों का ये भी मानना है कि अगर उनके नाम से अगर कई खेती अगर है तो उनको वृद्धा पेंशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सर, इसको किस तरीके से बता रहे हैं आप, क्या देखते हैं आपके क्षेत्र में इसको लेकर?
जी अभी मैं विधायक जी के पास ऐसे 4-5 जनों के ले गया था मेरे यहाँ के, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, तो मैंने विधायक महोदय जी को सब ये बताया। तो विधायक महोदय जी का कहना पड़ा कि नियम यह आया है, बोले कि जिनके पास में गरीबी रेखा का कार्ड है
जी
उन्हीं को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी,
जी
जिनके पास में अंत्योदय या गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है
जी
उनको पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा नियम आया है बोले। अब जिनके पास में ये कूपन भी है तो उसको भी उसमें लाभ मिल सकता है।
जी
हाँ कूपन जो मिलती है ना आजकल ये मजदूरों को,
जी
जी, वो भी है तो वो भी मतलब लाभ ये मिलना चाहिए। जी
सर, आपके क्षेत्र में कितने ऐसे वृद्ध हैं जिनको वृद्धा पेंशन का लाभ मिल पा रहा है?
हमारे एरिया में जी लगभग ये पंचायत में जोबली पंचायत में
जी
300 लोगों के लगभग मतलब लाभ मिल रहा है,
जी
और बहुत सारे ऐसे हैं वृद्ध जिनकी उम्र तो 60 वर्ष से ऊपर हो गई है,
जी
उनके पास जमीन नहीं है कुछ नहीं है, गरीब है, लेकिन उनको गरीबी रेखा का कार्ड नहीं होने से वो ये लाभ से वंचित है। ऐसे मतलब बहुत सारे हैं, 50 लोग हैं यहाँ।
सर, आपके क्षेत्र में फिर जनप्रतिनिधि हो या ग्राम पंचायत की व्यवस्था हो, इसमें सहभागी होकर क्या इन जो बिना वृद्धा पेंशन के हैं उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
नहीं जी, हमारे पंचायत में तो जो पात्र है उनको लाभ नहीं मिल रहा है, और जो अपात्र है उनको लाभ दिया जा रहा है योजना का, चाहे वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना हो या फिर एमपी एमपी गवर्नमेंट की योजना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो नियमानुसार नहीं आते, नियम में नहीं आते, अपात्र है, उनको लाभ ये मिल रहा है, और जो बेचारे गरीब लोग हैं जो पात्र है जो नियम में आते हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैंने कई बार पंचायत का ध्यान ग्राम सभा में इस और ये खींचा, लेकिन उन्होंने इसके और कोई ध्यान नहीं दिया
सर,
जी।
अभी आपके क्षेत्र में वृद्धा पेंशन आपने बताया कि नहीं मिल रहा है कुछ लोगों को, तो उनको वृद्धा पेंशन मिले इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, या उनके ओर से क्या प्रयास किए जाने चाहिए, या सरकार की क्या प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उनको भी वृद्धा पेंशन का लाभ मिल सके?
जी, मेरे विचार से तो ये होना चाहिए कि जैसे जिसके पास में गरीबी रेखा कार्ड है उनको तो खैर उसका लाभ मिलता है, लेकिन जिनके पास में नहीं है उनको राशन भी नहीं मिलता और वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिलती। तो उसके द्वारा शासन की ओर से एक हर गांव में पंचायत में सर्वे होना चाहिए, और सर्वे जो आएगी टीम उन्होंने निष्पक्ष मतलब ये सर्वे करना चाहिए। जो सही में गरीब है, जिनके पास में खेती बाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, मजदूर है, उसको उन्होंने पात्र में लाना चाहिए और उसको उसका लाभ देना चाहिए। तो इसके लिए अच्छा ये निष्पक्ष मतलब सर्वे टीम यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है।
सर, ऐसे कितने लोग हैं जो एक वृद्धा पेंशन के लायक है, वो काबिल है, लेकिन उनके पास आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, या अन्य किसी राशन कार्ड जैसी डॉक्यूमेंट नहीं होने से इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं?
जी, तो जी मतलब जिनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, सब है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसके 5-6 साल पहले जो पंचायत द्वारा सर्वे हुआ था वो मुंह देखी कि मतलब काम हुआ था सर्वे, जो अच्छे लोग थे या जिनका दबाव पंचायत के ऊपर था उनके नाम उन्होंने, भले ही वो नियम में नहीं आते होंगे, उनके नाम उन्होंने ला दिए। और जो बेचारे गरीब लोग हैं जो मुंह से बोल नहीं सकते, दबाव नहीं डाल सकते, डर के मारे, तो वो बेचारे पात्र होते हुए भी वो अभी बाहर है योजना के, वो योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे। ऐसे 25% लोग हैं हमारे यहाँ
जी हाँ
जी।
सर, अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो सर ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, परिचय पत्र भी नहीं है, और उनको वैक्सीन नहीं लगी है, ऐसे कितने लोग बचे हुए सर?
नहीं तो जी यहाँ पे तो ये आधार कार्ड वगैरह तो ये सभी के पास है जी, वोटर आईडी भी सभी के पास है, और वैक्सीनेशन की बात है तो ये 50% यहाँ पे पूर्ण हो गया है। वैक्सीनेशन मतलब दोनों डोज लग गया है।
जी
अब बाकी बचे 50%,
जी
तो उसमें से ऐसा है कि 25% जो ऐसे लोग हैं जिनको एक डोज लग गया है, दूसरा डोज अभी लगने का इंतजार है, और 20-25% ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने डर के मारे या ये भ्रम के मारे गलत फहमी में अभी तक डोज नहीं लगा है। तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई दो डोज लगाना बहुत जरूरी है, ताकि मतलब आगे जाके अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, ऐसी मैं उनको सलाह देता हूँ जिन्होंने अभी नहीं लगाया डोज
जी
जी।
सर, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। छिंदवाड़ा जिले के स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर एलजी साहू ने जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, और ना ही राशन कार्ड है, उन लोगों को भी अभी वैक्सीन मिलेगी, अभी जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था द्वारा ये एक पहल की गई है, बीते 2 दिनों में इसकी घोषणा की गई है। और मोबाइल वाले बीते दिनों ही इसको लेकर, जैसे कि भिक्षुक हो जो घूम फिर कर अपना पेट भरते हैं, इन लोगों के पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है, परंतु इसके लिए भी अब छिंदवाड़ा जिले के स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी पहल की है। सर, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मोबाइल वाले ने बीते दिनों ही इसको लेकर एक आवाज उठाई थी और आज इसको देखा जा रहा है।
जी तो ये जिनके पास में समझो आधार कार्ड है या जो भी है वोटर आईडी नहीं है, ऐसे लोग क्या है कि योजना के लाभ से वंचित हो जाते हैं। यदि सरकार ने या ये प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है और वो नियम में आते हैं तो उनको उसका लाभ मिलता रहेगा, तो ये एक अच्छी पहल है गरीबों के लिए। हालांकि सभी ने आधार कार्ड वोटर आईडी बनाना चाहिए, लेकिन भूलवश या मान लो अनजानवश नहीं बना है और आपने ये मतलब पहल ये की है प्रशासन ने, तो ये उनको लाभ देने के लिए बहुत अच्छी पहल है ऐसा मैं मान रहा हूँ।
जी,
जी
तो ये थे जागेश्वर जी, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, साथ ही जो भिक्षुक हो या अन्य कोई ऐसे व्यक्ति जिनको आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड नहीं है, उनको भी वैक्सीन लगने की व्यवस्थाएं अभी स्वास्थ्य विभाग ने की है। इसको लेकर जागेश्वर जी ने मोबाइल वाणी पर अपनी राय दी। जागेश्वर जी, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी धन्यवाद, जी धन्यवाद।
छिंदवाड़ा वायरन से आपका दोस्त योगेश।